प्रीवियसली ऑन द सीरीज ऑफ टाइम ट्रैवल हमने ये देखा था कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं एक तरीके से कि स्पीड हम अगर पकड़ ले तो वो हम रिलेटिवली टाइम को धीमा कर सकते हैं। ये कैसे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कई लोगों को पता होगा, मगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पूरा अच्छे से कोई अच्छा डेफिनेशन नहीं दिया गया अभी तक। दिस इज द एपिसोड ऑफ थ्योरी ऑफ टाइम ट्रैवल विच आई एम गोइंग टू डिफाइन द रिलेटिविटी विच वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन। सो लेट अस बिगिन विद आवर टुडेज एपिसोड। It was a time when Einstein used to do his daily chores and his office work. तो time था दोपहर का, उस समय अपना काम हम ख़त्म करके Einstein घर जा रहे थे। ज़्यादा कुछ था नहीं, सब काम ख़त्म करके फिर जब वापस जा रहे थे, वो एक ट्रेन ली थी उन्होंने, कार्ट, पुराने टाइम में कार्ट हुआ करती थी जिसे आप जानते होंगे, वो लिया था उन्होंने। और उस समय काफ़ी शांत शांत सा माहौल चल रहा था, उन्होंने मतलब काफ़ी वर्क अपना जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया करते थे सुबह के टाइम, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्स के जो ट्रुथ है उस चीज़ को फाइंड करना रहता था, ये सारी चीज़ें थी उस समय। प्लस अभी बात आती थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, ये चीज़ कहाँ से उन्होंने डिस्कवर करने के लिए उनको आइडिया मिला या फिर इस तरीके की चीज़ें जब हुई। तो सबसे पहली चीज़ कि वो जब कार्ट में बैठे हुए थे तब उन्हें ये लगा कि हम अगर कार्ट की स्पीड को लाइट की स्पीड के साथ टच करा दें विच इज़ वेरी हाई, तो हम ऑलमोस्ट टाइम को डिवाइड कर सकते या एक्सपैंड कर सकते एक तरीके से, समझ रहे हो आप। किसी भी तरीके से अगर हम अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड के साथ मैच कर लिए तो हम कर सकते हैं कि हम टाइम को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। हमारा जो एक सेकंड जो नॉर्मल होता है हम उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, हम एक मिनट को उससे ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं जितना वो एक्चुअल में होता है। ये चीज़ें जब हो रही थी उसके बाद उन्होंने जब ये सारी चीज़ें सोची तो उनके जो मेन आइडल्स थे, ये बहुत लोग कम लोगों को पता है कि आइंस्टाइन के जो मेन आइडल्स थे वो आइज़ैक न्यूटन प्लस मैक्सवेल करके एक क्लार्क मैक्सवेल उनका नाम था, जिन्हों अब न्यूटन का तो सभी को पता है कि उन्होंने ग्रेविटी खोजी थी, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका कि ग्रेविटी सब कुछ एक तरीके से मतलब सबको एक समान तरीके से खींचती है अपनी तरफ टू द सेंटर ऑफ अर्थ। और क्लार्क मैक्सवेल को अगर आप लोग नहीं जानते हो तो उन्होंने मतलब अपना ये दिया था कि लाइट, एक जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, लाइट कभी भी एक साइड से दूसरी साइड अपने आप नहीं मुड़ जाती बिना रिफ्लेक्ट किए, उसको एक सीधा पाथ ही रहता है, वो सीधे ही चलती है। अब आइंस्टाइन को इस सारी चीज़ों से क्या मतलब था, मतलब सीधा सा ये था, कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि यार देखो अगर हम अपनी स्पीड को फास्ट करें जो किया जा सकता है बट नियरली इम्पॉसिबल है इस समय, बट ये जो थ्योरी है ये डिफाइन करती कि हाँ हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम जो अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है न्यूटन्स लॉ और मैक्सवेल के लॉ में, कि वो दोनों एक तरीके से सामान नहीं बैठ रहे ताकि आइंस्टाइन अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कवर कर पाए एक तरीके से। तो आइंस्टाइन ने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया इसी सोच से कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ये स्टार्ट किया उनका पहला जो थॉट था एक तरीके से वो ये था कि अगर मैं बीच में खड़ा हूँ, मेरे एक साइड बिजली गिरी और दूसरे साइड भी बिजली गिरी, दोनों एक टाइम पे एक साथ गिरी, तो मुझे उन दोनों का इफेक्ट एक साथ ही होगा। बट अगर मेरे सामने से एक ट्रेन जा रही है और मेरे एक साइड में एक बिजली गिरी, दूसरे साइड में दूसरी बिजली गिरी, तो उन दोनों का जो इफेक्ट है वो मुझे तो सेम टाइम पे आएगा, मुझे सेम टाइम पे वो इफेक्ट दिखेगा भी, बट जो ट्रेन में जो बैठा है आदमी उस तक जो लाइट ट्रैवल कर रही है, जो पहले लाइट ट्रैवल कर रही है उसे वो लगेगा कि हाँ ये साइड वाली बिजली ज़्यादा जल्दी गिरी है। दैट्स अ सिंपल थिंग विच आइंस्टाइन गेट अ मोटो, और उन्हें एक लीड मिल गई थी जिससे वो अपना ये लॉ को आगे बढ़ा सकते थे इस तरीके से। अब जो बात आती है कि इस तरीके से, मतलब इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से या फिर इस छोटे से थिंकिंग से इतना बड़ा लॉ कैसे डिस्कवर हो सकता है, तो सीधी सी बात है कि आइंस्टाइन अलग जगह खड़े हैं और जो थर्ड पर्सन है वो अलग जगह खड़ा है, बट दोनों के तरफ लाइट अलग अलग टाइम से ट्रैवल हो रही, भले ही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा बट है ऐसा। तो इसी चीज़ को लेके उन्होंने ये एक तरीके से थ्योरी बनाना स्टार्ट किया था उस समय। बट अगर वो इस थ्योरी को निकालते हैं या फिर प्रूफ करने के लिए कहीं भी कुछ ऐसा मतलब प्रूफ करने के लिए किसी को स्टेटमेंट देते हैं, दैट वुड बी सिंपली, मतलब वो या तो न्यूटन्स लॉ ख़राब करेगा या फिर ये बोलेगा कि न्यूटन्स का लॉ इनकम्प्लीट है या फिर लाइट की स्पीड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं है। ये चीज़ें दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती थी, इसलिए अब आइंस्टाइन एक तरीके से फंस चुके थे कि ऐसा कैसे करें। तो उन्होंने सिंपल सी एक थ्योरी दी कि यार इसको सिंपल डिफाइन करो कि हम अगर तेज चलें तो हम न्यूटन के लॉ को भी ना डिस्टर्ब करते हुए, ना क्लार्क मैक्सवेल के लॉ को डिस्टर्ब करते हुए, हम सिंपल ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ हमारी स्पीड एक तरीके से अफेक्ट करती है हमारे टाइम ट्रैवल को। हम जो टाइम ट्रैवल करते हैं पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, हम उसको स्पीड से चेंज कर सकते हैं। स्पीड हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हम टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। और इस थ्योरी को निकालने के बाद उनका ये थ्योरी नाम दिया गया टाइम डायलेशन और स्पेशल रिलेटिविटी। दिस वॉज द कम्प्लीट स्टोरी, नॉट कम्प्लीट बट या अप टू एन एक्सटेंट इट वॉज कम्प्लीटली फ्रॉम माई साइड टू एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई आइंस्टाइन। And this was the Tuesday episode of My Real Life Podcast. If you liked it, if you loved the episode, please make sure to share this episode as much as possible. It was really lovely, lovely, lovely support of your guys. And इस चीज़ का मैंने कहा था एंड नहीं हुआ है, इसके बाद हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अब क्वांटम थ्योरी किस तरीके से टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है ये आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी का एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। जुड़े रहो और प्लीज़ शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।